स्वामी विशेषता है। रूप गोस्वामी जी शिक्षा गुरु हैं और सनातन गोस्वामी
दीक्षा गुरु।
चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण यदि शिक्षा गुरु हैं मतलब उनके साथ में कैसे व्यवहार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत शिक्षा गुरु हैं। वंदे गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथानिताम
सजीवम।
और उसके बाद में शिक्षा गुरु और है कौन, साद्वैतम सावधूतम पर्यन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखानिताम। ये सब शिक्षा गुरु, इसलिए ये सब चीज परमात्म राज्य में याद रखना होगा। इसलिए भगवान से की पूछ्य मौली इनमें तीन गुरु को प्रणाम किया। एक तो वर्त प्रदर्शक कौन चिंतामणि बड़े आदर के साथ में और सबसे पहले, और दूसरा किया किसको, दीक्षा गुरु को सोमगिरी को, और तीसरा किसको,
शिक्षा गुरु मौली।
इनको किस लिए किया, जो हृदय में कृष्ण करुणामृत जैसा भाव सब उदित करा दिया, ये चैत्य गुरु के रूप में है और शिक्षा गुरु के रूप में भी है। यह परमार्थिक विशुद्ध भाव है, ये निर्गुण में भी उत्तम है ना? जिसको इतना ऐसा रत्न जगत के लिए दिया वो किसने दिया, कृष्ण ने तो स्पूति कराई सिखी पुच्छ मौली, उन्हीं को लक्ष्य करके समस्त भावनाएं निकली। किंतु भाई थोड़ी कमी रह गई ने? कुछ कमी रह गई। और अब चलिए थोड़ा सा महाप्रभु के समय में, अब तो महाप्रभु से पहले युग का। महाप्रभु जी स्वयं कृष्ण है। महाप्रभु जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया कि बनाया, किंतु फिर भी रूप कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं। सनातन प्रभु जी कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं। जगत कहता है कि हमारे गुरु हैं। महाप्रभु जी को कहते हैं ना कभी लोग, हाँ इसमें बात भी कुछ ठीक है। बनारस में सनातन गोस्वामी जी के हृदय में सब कुछ, बाह्यता भी दिया और चित्त प्रेरणा के द्वारा दे भी दिया ना? वो जो चित्त गुरु है उसके रूप में भी दिया और डायरेक्ट उपदेश दिया। जीव का स्वरूप क्या है, जीव स्वतः है नित्य कृष्ण दास। कैसा करना चाहिए, कृष्ण के काश संबंध है। तीन चैप्टरों में संबंध अभिधेय और प्रयोजन का जो ऐसी शिक्षा दी, आज तक विश्व में ऐसी शिक्षा कभी भी प्रचलित नहीं थी। अब इसे बढ़कर के कोई गुरु होगा, यह है गुरु तत्व, यथार्थ गुरु। कृष्ण को भी सांदीपनी ने यह गुरु दिया होगा, अथवा अभी तक जितने गुरुओं की बात कही थी कोई भी ऐसी कोई शिक्षा दिया होगा अपने शिष्य को, इसलिए यह यथार्थ गुरु तत्व है। ऐसे गुरु का यदि दास कोई हो तो वो क्या होगा, सर्वोत्तम गुरुदास होगा। अभी भी थोड़ा सा, अभी थोड़ा और बाकी रह गया, थोड़ा सा और बताएंगे आगे कहो। आज सनातन गोस्वामी को जो वाराणसी में शिक्षा दी और उसके बाद में कहा प्रयाग में, आखि पहले प्रयाग में तब यहाँ पर,
पहले प्रयाग में
रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी। इसलिए रूप गोस्वामी जी वंदना क्या करते हैं, मैं भक्ति गोस्वामी सिंधु में प्रवर्तित हुआ जिसकी कृपा से, जिसकी प्रेरणा, प्रेरणा शब्द दिया है ना, हृदय जस प्रेरणा प्रवृत्ति, तो अहम रूपो बराक, बराको रूपयम, मैं बराक, बराक मैंने क्षुद्र होकर के थी। भक्ति गोस्वामी सिंधु और उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथों में प्रवृत्त हुआ जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से, प्रेरणा कौन देता है, गुरु देता है। इससे जिनकी प्रेरणा से हुआ, ऐसे जो कृष्ण स्वयं कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। और प्रणाम किया एक और दीक्षा गुरु को, सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी को दीक्षा गुरु माना डायरेक्ट, इसलिए वो दीक्षा गुरु के रूप में, उसके लिए भी श्लोक है। हैं अतुल गोस्वामी के लिए उन्होंने कहा विषाम मंदिर तया तस् सनातन तनो मदीशस्य। सनातन गोस्वामी हमारे मद ईश्वर हमारे आराध्य हैं, ईश्वर हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? ये जो ग्रंथ हमारा भक्ति गोस्वामी सिंधु है ये कृष्ण के प्रिय हैं, इसलिए उनके विश्राम करने के लिए मंदिर का है, मंदिर है, इसमें सनातन गोस्वामी हमारे जो गुरु हैं इसमें विश्राम करें, अथवा जो नित्य सनातन जो ईश्वर हैं कृष्ण स्वयं वो इसमें विश्राम करें, इसलिए गुरु और भगवान दोनों ही इसमें विश्राम करें। भक्ति सामर सिंधुर भवतु सदा एवं प्रमोदाय, उनके प्रमोद के लिए भक्ति सामर सिंधुर। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को दोनों महापुरुष और एक तीसरे हैं कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर को उन्होंने क्या दिया? अंगूठा पिलाया, तो उन्होंने क्या बनाया? उनका ग्रंथ क्या है? आनंद वृंदावन। और छोटी सी स्थिति में ही अभी थोड़े दिन का बालक ऐसा सुंदर काव्य बनाया है, राधा जी का कृष्ण का प्रेम उसी में अत्यंत सुंदर अलंकारों से पूर्ण, शब्दालंकार अनुप्रास और क्या क्या अलंकार से समेत ऐसा सुंदर बनाया कि सब लोग दांतों तले अंगुली काट दिए, ऐसा कैसे बनाया? कभी कर्ण स्वरूप बन गए, ये है शिष्य। अब थोड़ा सा अब उपसंहार करते हैं इसके विषय में, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब चलिए महाप्रभु जी अपनी भाव दशा में अंतिम दिनों में काशीश्वर पंडित के घर में, वो कौन?
गंभीरा
चौबीसों प्रहर भाव में विभोर रहते हैं। सेवा कौन करता है? और एक छोटा सा बालक भी है, कौन? अरे वो गोपाल, जो पीछे से गुरु गोपाल हुए, गोपाल गुरु पीछे हुए, तो वो दोनों सेवा करते हैं। किंतु गोविंद ही का नाम प्रसिद्ध है। गोविंद जी महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार में हरिदास ठाकुर को रोज ले जाते हैं ना प्रसाद, क्योंकि वो आते नहीं है। महाप्रभु जिसको जिसको प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसी से उनका संबंध है। और महाप्रभु का जिसे संबंध नहीं है उसका उसका संबंध है। शिष्य का भी ऐसा होना चाहिए, गुरु के साथ में जिस जिसका संपर्क है उसके साथ में उनका भी वो प्रिय है। अब ये गोविंद जी सब कुछ समाधान ये करते हैं महाप्रभु जी के पास। ये शरीर किसका है? महाप्रभु जी का, गोविंद का है। वो उनकी सेवा करने के लिए कभी तो उनके ऊपर चद्दर डाल करके, रास्ता बंद है, महाप्रभु जानबूझ करके परीक्षा ले रहे हैं, तो उस पर चद्दर डाल करके इधर पैर दबाने के बाद में उधर में चले गए, उधर पैर दबाए, महाप्रभु जी सो गए, एक दो घंटा सो लिया, जानबूझ करके वो सो रहे हैं, तीसरी पहर में उठे, जानबूझ करके उठे तो कहा अरे तू आज गया नहीं प्रसाद पाने के लिए? तो नहीं प्रभु आज नहीं गया। क्यों नहीं गया? तो मैं इधर में चला आया, कोई रास्ता था जाने के लिए नहीं, तो तू आया कैसे इधर में? तो प्रभु आपकी सेवा करने के लिए आपके अंगों पर उत्तरीय दे करके कपड़ा और मैं उधर में चला, तो ऐसे ही लौट जाता। प्रभु उस समय तो मैं गया था आपकी सेवा के लिए, अब इधर मैं अपनी सेवा के लिए आऊं, ये कैसे संभव? देखो शिष्य में होने में कैसा करना पड़ता है, अपना विचार सब कुछ छोड़ करके अपने आराध्य जो गुरु हैं उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ बलिदान देना पड़ता है, तिलांजलि दे करके करना, अपनी इच्छा के विपरीत है तो उसको हम करें, तब तो गुरु सेवा करें, नहीं तो नाम कटवा दो, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो उन लोगों में आ जाएंगे हम गिनती। सबसे बड़ी मार्का की बात ये की है गोविंद जी की, जो कि प्रशंसा से भी ऊपर की चीज है, जिसको हम लोग शायद स्पर्श न कर सके। क्या चीज? ये कहते हैं कि हमारे महाप्रभु जी के पास में रात में ये रामानंद और स्वरूप दामोदर आते क्यों हैं? उनका आना अच्छा नहीं इनको लगता, क्यों किस लिए बतलाओ तो। जब भी आते हैं पहले तो कुछ ठीक रहते हैं, और जहां ये दोनों आ जाते हैं और रात भर रोते हैं और रुलाते हैं, न सोने देते हैं सोते हैं न सोने देते हैं, कुछ कह तो सकते नहीं, चुपचाप बेचारे टुकुर टुकुर देखते हैं कि कब चले जाए, सुनते हैं सब, और उनका वह रोना देख करके उनका हृदय रोता रहता है। इतनी बड़ी भारी ये सेवा है, हम जब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचेंगे इस सेवा को नहीं समझ सकते, कितनी बड़ी भारी सेवा है। उनके दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी, वही सर्वस्व जीवन के आधार है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा तब तो गुरु सेवा करेगा। इसलिए हरिदास वर्ज, ऐसे लोग यदि हो तो ये हरिदास वर्ज। आज यहीं तक रहे बंझा कल्पतरु भ्रष्ट। राधा कुंदम गिरिवर महो राधिका माधवासन प्राप्तो जत्र प्रतिकृतया ते गुरुं तन्नतोऽस्मि। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पदर्श गुरु और दूसरा बतलाया दीक्षा गुरु और तीसरा बतलाया शिक्षा गुरु। पदर्श गुरु को भी अवज्ञा कभी मत करो। अरे हमको तो इधर ही आना था, गुरु जी से ही मतलब था, वो तो आने का एक बहाना हो गया, ऐसा खबरदार मत करना। वो कृष्ण की प्रेरणा से ही वो व्यक्ति ने तुमको प्रेरित किया इधर आने का, इसलिए हम उसके ऋणी हैं और रहेंगे। इसलिए जरूर पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति या भक्ति होने के पहले, गुरु से संबंध होने के पहले जिन लोगों ने हमको सहायता दी भगवत पक्ष में आने के लिए, उन सबका हम ऋणी। ऋणी होना ही वैष्णवता है, जिसमें ऋण नाम की कोई चीज नहीं, उसमें तो वैष्णवता एक लेश मात्र भी उसमें नहीं। इसलिए उनका चिंतामणि को उन्होंने प्रणाम किया, दीक्षा गुरु की सोमगुरी का उन्होंने प्रणाम किया, और अंत में शिक्षा गुरु शिक्षित मौली को प्रणाम किया। इसमें शिक्षा गुरु के ऊपर में कुछ महत्व दिया गया अधिक, क्योंकि कृष्ण ही है ना सर, यहाँ पर शिक्षा गुरु महाप्रभु हैं, वहाँ पर तो महत्व देना ही पड़ेगा। तो भी हम दीक्षा गुरु के इस जगत में ऋणी हैं, बिना उनसे उनसे संपर्क होता कैसे, भले ही महिमा उनकी हो। इसलिए दोनों में भगवान शिक्षा गुरु के रूप में होने पर भी प्रणाम करने पड़ेगा। आखिर उन्होंने तो इस चीज पकड़ करके हमको कृष्ण के चरणों में जुटाया, इसलिए उनके प्रति हमारी। कभी कभी भजन राज्य में दीक्षा गुरु से भी कभी कभी शिक्षा गुरु का हो जाता है, कभी मूल में हम ऋणी हैं। जैसे हमारे ब्रज में वो कल बतला रहा था हृदयानंद की हृदय और बतलाया जीव गोस्वामी के संबंध में श्यामानंद प्रभु को लेकर, दुखी कृष्ण दुखी कृष्ण दास उनका नाम। तो गुरु जी से कुछ उच्च शिक्षा लेने चाहते थे, उन्होंने कहा कि वृंदावन में जाओ, जी गोस्वामी की हम के पास भेज दिया। उनके पास में आए, शास्त्रों का अध्ययन किया, राधा जी के प्रति एकांतिक भक्ति उनको मिली। एक दिन श्रृंगार भट्ट में रहते समय, झाड़ू देते समय कुंज में उनको सोने का नुपुर मिला, और मिलने पर उन्होंने जीव गोस्वामी के पास दिखलाया। जीव गोस्वामी ने कहा कि किसी को मत देना, बहुत से ठग तुम्हारे पास में आएंगी और उसको ठग करके ले जाएंगी, मत देना किसी को, जिसका हो नुपुर वो आए तो उनके चरणों में हम पहना देंगे, बस यही कहा। ठीक,
जहाँ थोड़ी देर हुई जी गोस्वामी के यहाँ से पढ़ करके गए तो दोनों कोई दो सखियां गोपियां उनके पास में आई। अरे कृष्णदास दुखी कृष्णदास, तुमको यहाँ पर कुछ मिला? मिला तो जरूर है, क्या मिला ये तुमको क्यों बतलाऊं? तुम्हारा कुछ गुम हुआ तुम बतलाओ। उन्होंने कहा जिसे हमारा नूतू कहीं हमारी सखी का कहीं गिर गया है, मिल गया है तो दे दो। तो मिला तो है किंतु दूंगा नहीं, जिसका है वो ले जाए प्रमाण दे करके। मैं तुमको लज्जा नहीं आती, तुम बड़ा ब्रह्मचारी छोटा सा बालक और तुम स्त्रियों के पैर में कुमारियों के पैर में तुम नूपुर पहनाएगा, ये कैसी बात तुमने कह दी? तो तुम जो भी कहो हम तो देंगे नहीं, हम तो उन्हीं को देंगे। बहुत तरह से चेष्टा की नहीं दिया, अंत में लौट गई। हाँ सखी हमारी राजी है आएगी, किंतु तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध करके और तुम पैरों में उनके नूपुर पहना दे, राजी है तो हम राजी हैं। बस उनको ले आए और आंख पर काली पट्टी बांध दी और उनको वो पैर में पहनाने गए तो पैर छोड़े नहीं, रोने लगते। एक बार दर्शन तो कर लूं इसको पहना रहा है, बस काली पट्टी हट गई और उसने दर्शन किया, प्रेम में भी जोर हो गया। आज अब तेरा नाम दुखी कृष्णदास नहीं रह करके अब तुम्हारा श्यामानंद नाम हो जाए, श्यामा को आनंद देने वाला है अपनी सेवा से। श्यामा जी कौन है? श्यामा जी राधा जी, उनको तुम आनंद देने वाला है, इसलिए तुम आज से श्यामानंद होगा। और श्याम आनंद श्याम को भी आनंद देने वाले नाम से ही श्यामानंद हो जाता है, श्याम और आनंद श्यामानंद। बस एकदम कृतार्थ हो गए, सबसे उनका नाम दुखी कृष्णदास से श्यामानंद हो गया। जीव गोस्वामी के पास में आया और सब बातें बतला पर तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो। किसी से जब इनका सब कुछ अध्ययन हो गया तो वृंदावन धाम का दर्शन कराया और अंत में इनको फिर लौटा दिया। ये तीनों लौट करके श्यामानंद प्रभु नरोत्तम दास और सुमान ये फिर तीनों लौट गए बंगाल में। इन ये इनके गुरु दीक्षा गुरु तो हैं कौन? हृदयानंद जी कलनाथ पाठ वाले, किंतु उन्होंने इनके पास में भेजा कुछ विषय के लिए जानने। यदि जीव गोस्वामी जी श्यामानंद जी अपने गुरु से कहते कि मैं उनसे पढ़ने कुछ जानना चाहता हूँ और ये कहते मत जाना, हमारा शिष्य होकर के तुम उनके पास में जाएगा, वो अपना लेगा और फिर तुम हमारा शिष्य नहीं रह जाएगा, तो ये संकीर्णता हो जाती। ये गुरुत्व का लक्षण, गुरु होता है परम उदार, इसलिए ऐसा नहीं करता। यदि होता तो हम लोग समझते कि उनका गुरु गुरु नहीं थे, उनमें कुछ कमी थी, किंतु उनका उदार हृदय उनके पास रखते हमारे शिष्य का कल्याण है। इनका जीव गोस्वामी उनके प्रति जीव गोस्वामी कितना उच्च अधिकार है, वो तो विलास मंजरी है। हृदय चैतन्य भी कुछ होंगे कृष्ण लीला के, किंतु जीव गोस्वामी का बहुत उच्च अधिकार शिष्यता सब विषय में, सिद्धांत विषय में, सब विषय में। उस समय में भारतवर्ष के सब प्रधान गणमान्य विद्वान भी थे और रसिक भी थे, सिद्धांत भी थे, इसलिए उनके प्रति तो उनकी भक्ति होनी स्वाभाविक है अभी। किंतु उनके गुरु को ये नहीं हुआ कि हमारा शिष्य उनको अधिक आदर करता है, उनको इसी विषय का आनंद है कि हमारा शिष्य ऐसी विराट चीज को पा करके मेरा भी जीवन के साथ कर दिया। ऐसा ही परस्पर होता है, वहां पर वैवनस्य द्वेष हिंसा इत्यादि नहीं होती है, ये सब परस्पर। इसलिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है तो दो सुनिए रहे, क्यों हमारे गौड़ीय वैष्णव में प्रत्येक वैष्णव ही गुरु है। प्रत्येक नरहरी सरकार का वो कृष्ण क्या पुस्तक का नाम जिसमें वैष्णव मात्र को ही गुरु बतलाया गया, कृष्ण क्या पुस्तक का नाम, महाप्रभु के समसामयिक हैं, महाप्रभु जी के परिकर हैं, उन्होंने लिखा है वैष्णव मात्र ही गुरु है। कृष्ण भक्ति तरंगिनी अथवा कुछ ऐसा नाम है, उसमें यह ऐसा लिखा प्रत्येक सचमुच में प्रत्येक वैष्णव ही यदि वैष्णव है तो गुरु है, अपने से उन्नत रसिक सिद्धांत मतलब वैष्णव ही। भेद तो केवल यहाँ है पर तत्व में गोलोक वृंदावन में ये गुरु तत्व और ये सब नहीं, वहां पर तक सखी तत्व है, सभी की सखा तत्व है कि कृष्ण के परिकर सभी हुआ। यहाँ पर सनातन गोस्वामी गुरु हैं, रूप गोस्वामी उनके शिष्य हैं और वहां पर समुद्र तरगरी के सब सखियां कह दिया, बल्कि रूप मंजरी की मर्यादा कुछ अधिक है। वहां पर ये सब चीज कोई भी चीज दूषणीय नहीं होता, छोटे बड़े का ये सब विचार नहीं, इसलिए सनातन गोस्वामी इस लीला में भी रूप गोस्वामी को प्रणम्य बतलाया है और एक तरह से उनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा या कृष्ण कृपा मिलती है ऐसा कह करके प्रणाम किया है। कल तक हमने इस विषय का ये सब हमने बतलाया था, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इधर की तरफ। महाप्रभु संत दामोदर राय रामानंद के बाद में कवि कर्णपुर के संबंध में बतलाया, ये सभी लोग महाप्रभु जी को अपना गुरु मानते हैं। इसके बाद का युग आता है रूप सनातन जी का, ये लोग गुरु हैं और शिष्य कौन है, जी गोस्वामी और रघुनाथ दास इत्यादि। रघुनाथ दास गोस्वामी रूपानुभव में श्रेष्ठ हैं, रूपानुभवर हैं। महाप्रभु रूप गोस्वामी की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सब कूट कूट करके रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी है। भक्ति रसामी सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में बहुत तरह के साधकों के साधन का क्रम बतलाया गया है और तटस्थ रूप में सभी रसों का उसमें वर्णन है, किंतु रूप गोस्वामी क्या तटस्थ है या सभी रसों में है या तटस्थ रस करके वर्णन किया है सबका, तटस्थ रह करके सबका वर्णन, एक किसी रस में वो अपना उनका रस है। उनका रस क्या है, उनका अपना रस मंजरी भाव है। मंजरी भाव किसको कहते हैं, सखियां बहुत तरह की होती हैं, सखी नित्य सखी प्राण सखी प्रिय सखी प्रिय मर्द। साधारण उसमें सखी वह है जो कृष्ण के प्रति अधिक आकर्षित होती है, कृष्ण के प्रति स्नेह तो सब में है किंतु कृष्ण स्नेहाधिक्य होती है, जैसे धनिष्ठा इत्यादि सखियां। और नित्य सखियां वो हैं जो अब तो कुछ सखियां ऐसी हैं जो कम स्नेह है सखी के प्रति और कृष्ण के प्रति, दोनों के प्रति स्नेह सम स्नेह, कृष्ण के प्रति राधिका जी के प्रति। और कुछ है जो राधा जी सम स्नेह होते हुए भी राधा जी के प्रति कुछ अधिक झुकी, यह है ललिता विशाखा इत्यादि प्रिय नर्म सखियां और प्राण सखी प्रेष्ठ सखी और रह गई है नित्य सखी और प्राण सखी, ये लोग राधा जी के प्रति अधिक स्नेह, कृष्ण के प्रति नहीं। सब समय इनकी पाल्य दासी है, ये रहेंगी कहां, राधा जी जहां रहेंगी वहीं, और सब समय राधा जी के सुख में सुखी, दुख में दुखी, विरह में दुखी, सम्मिलन में सुखी रहेंगे, और इन्हीं की सेवा में सब समय व्यस्त रहे, इनका आदेश पालन करेंगे और इनके बहुत सी सेवा के कार्य। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी वैष्णव लोग हैं अधिकांश इसी के रस के उपास, और चैतन्य महाप्रभु इसी चीज को देने के लिए आए थे। क्या देने के लिए, अनर्पित करें किरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत जल रसान सभक्ति श्रियम, सभक्ति श्रियम। क्या देने के लिए आए, स्वभक्ति श्रियम, किंतु कैसी, अनर्पित करेंगी किरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसम, यहां पर छेद मत कर दो, पूर्ण विराम मत दो, तत्कर्ण हो जाएगा। समर्पय तुम देने के लिए, क्या की, अब वो पूरा एक साथ में कहो, समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम, बीच में छेद कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उन्नत उज्ज्वल रस रूपि जो अपनी स्वयं की जो भक्ति है, स्वयं कौन, राधिका, राधिका जो कृष्ण के प्रति पारकीय भावनाजुक्त जो भक्ति है, उन्नत उज्ज्वल रस उसको कहते हैं, उसकी श्री को देने के लिए, शोभा को देने के लिए, जैसे कमल में मंजरी होती है, आम्र में मंजरी होती है, उसकी शोभा है, ऐसे राधिका जी की प्रेम की शोभा क्या है, राधा जी का रूप है बहुत ही सुंदर, किंतु रूप की मंजरी कौन है, रूप में। कमल का फूल यदि हिलता है तो उसकी मंजरी और जोर से धक धक लपट झपट करके हिलती है, उससे उसको अधिक आनंद होता है, यह मंजरी का। राधा कृष्ण के मिलन से राधा जी को जितनी प्रसन्नता होती है उससे कहीं अधिक प्रसन्नता होती है उन सखियों को उनकी सेवा की भावना लेकर, उद्दीपना के द्वारा होता है। जो जो भाव राधा जी में होगा, उन सखियों में होगा, उससे अधिक भाव परिस्फुट रूप में इनमें प्रतिबिंबित होगा, इनको कहते हैं मंजरी। यही स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति का श्रिय शोभा है। स्वामी नराधिका जी, उनकी जो, उनका जो महाभाव है प्रेम, वो तो किसी को मिल नहीं सकता, उसकी शोभा मिल सकती है। राधा जी के रूप की मंजरी है रूप मंजरी, राधा जी के भावों की मंजरी है उसको कहते हैं भाव मंजरी, राधा जी के विलास की मंजरी है उसको कहते हैं विलास मंजरी, राधा जी के राग की जो मंजरी है उसको कहते हैं राग, ये सब यही देने के लिए हुआ है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनके रूप गोस्वामी का अपना जो भाव है वो ग्रहण किया, लिखा तो उन्होंने उज्जलिन मणि और भक्ति गोस्वामी सिंधु में शांत दास कक्ष बात्सल्य मधु, और इसके कितने हजारों भागों को उन्होंने इसको बांट करके और उसको विचार किया, किंतु अपना उनका क्या भाव था ना? ये देखना। रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया बाहरी रूप से, वैराग्य जी को भक्ति रसम प्रयत्न ही अपायन मानो निधि सुबंधम कृपाम बुद्धि पर दुख दुखी सनातनस्तम गुरु के प्रति, शिक्षा गुरु के प्रति जैसा होना चाहिए प्रणाम, ऐसा सनातन गोस्वामी जी अहत कृपा की के समुद्र है। मैं चाहता नहीं था भक्ति, अनभिक्षु मैं नहीं चाहता था, और बिल्कुल अंध था, अंध माने क्या, तत्व ज्ञान से अंध था, और इन्होंने, मैं जो चाहता नहीं था बिल्कुल अंध, जोर से पकड़ करके हमारे मुख में प्रेम ढाली दिया। कृपा मुदीर्य पर दुख दुखी सनातन प्रभु आश्रय, ऐसे सनातन गोस्वामी जो करुणा के सागर उनको मैं प्रणाम करता हूं। करुणा के सागर कौन है? संसार दावा नल गृह लोक प्रणाय कारुण्य घना घनत्व, करुणा के जो घन ये कौन है? सनातन गोस्वामी, उनको उन्होंने की प्रशंसा। किंतु ये बाह्य प्रणाम, ये बाह्य प्रणाम, महाप्रभु जी ने उनको वैदिक भक्ति की शिक्षा दी वाराणसी में, उनको इसी रूप में उनको प्रणाम किया। और शिक्षा गुरु जो हैं, शिक्षा गुरु का उल्लेख नहीं करते, ये शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ये सब कुछ नहीं, उनको हमारे रूप गोस्वामी को प्रणाम क्या करते हैं, कहते हैं श्री रूप मंजरी प्रथिता सुरेशमिन पुंसा परस्त नहीं बदनम पश्चती बिंबा धरे खतम अनागत भर्तृकाया बद जत्ते बधाई किम सुख। बराबरी में प्रणाम प्रणाम नहीं चलता, नमस्कार इत्यादि नहीं चलता, मिल गए तो हंसी दिलगी छिछोली के रूप में उनसे बात बात देख करके प्रसन्न हृदय से हो गए। कार्डिसी की जरूरत कुछ नहीं, ऊपर से सभ्यता की जरूरत नहीं, नमस्कार महोदय नमस्कार महोदय ये सब करने की जरूरत, मिल गए मुस्कुरा दिए बस, उन्होंने उस मुस्कुराहट को ग्रहण कर लिया थोड़ा सा, वो भी मुस्कुरा दिए बस हो गया प्रणाम। और भाव नहीं जहाँ है वहां पर तो मुस्कुराहट आएगी नहीं, नमस्कार महोदय नमस्कार महोदय बस ऐसा ही तक रह जाएगा। यहां पर ऐसी बात से उनको प्रणाम किया जिस गुरु को एकदम हृदय से आनंद से उठे, मुस्कुरा रहे हैं कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सिद्ध शरीर से देखा रूप मंजरी को, खुद है रति मंजरी देखा और उनसे दिलगी करते हुए कुछ अटपटी सी बातें कही। रूप मंजरी सकृष्ण, अरे ब्रजपुर भर में तुम्हारी बड़ी प्रशंसा होती है, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, ब्रज में तुम्हारे जैसा पतिव्रता कोई नारी है ही नहीं, पथिता पूरे में इस ब्रजपुर में, तो तुम्हारे पति तो गाय खरीदने के लिए बाहर गए हुए थे, तीन चार दिन हो गए अभी तक तो लौटे नहीं, मुझको पता है इस विषय का। पथिता पुरेशी पुनसह परस्य नहीं पश्यती थी, अब दूसरे किसी का मुख तुम देखती नहीं हो, अपने पति के अतिरिक्त कहीं भी नजर तुम्हारी नहीं जाती, ऐसा ही ऐसी तुम्हारी पति। किंतु ये क्या, मैं क्या भूल देख रही? उनका परस्य बदनम नहीं पश्यती थी बिंबा धरे खत्म मनागत भर्तृकाया जत्ते बधाई कुमुत सुख पंकज। तुम्हारे होठ बड़े लाल हैं, कैसे लाल हैं? बिंब की भांति बड़े पतले सूक्ष्म रस युक्त हैं, तो ये इस पर कुछ देख रहा हूं देख रही हूं, कोई सुख पक्षी तो नहीं आया और आकर के बिंब फल के बहाने यहीं पर बैठ गया, आप कहीं चोंच को देखा कि बिंब फल की नहीं, ये क्या? अरे तुम्हारा पतिव्रत धर्म कहां गया? तो है नहीं, फिर ये कैसे हो गई बात? यही कह करके कुछ हंसने लगे, मुस्कुरा दिया उन्होंने, बस प्रणाम का बाप हो गया। प्रणाम क्या होगा, लाखों पति ये प्रणाम हो गया, और सुन करके रूप मंजरी जी ने भी मुस्कुरा दिया। पर जगत में ऐसा ही होता है, इस जगत में भी दोस्तों से परस्पर मिलन होने पर ऐसा हो सकता है, ठठोली बोली ऐसे कुछ मनोरंजन की बातें हो जाती। सखा बहुत दिनों के बाद में आया, ऐसे कुछ बातें हो जाती। ऐसे ही अपने गुरु को देखो प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ पर गुरु तो कहाँ, किंतु यथार्थ गुरु तो यहीं पर। ये है रागानुगा भक्ति में भी रूपानुग का ये प्रणाम, इसको कहते हैं रूपानुग, रूपानुगत इसको कहते हैं। रागानुगा हो सकते हैं सभी, बहुत से हो सकते हैं, महाप्रभु के विचारधारा में आने वाले अधिकांशतः रागानुगा हो सकते हैं, किंतु होने पर भी रूपानु होना बड़ा भारी कठिन है। सभी रूपानु रागानु अवश्य भावी होंगे सभी, किंतु सभी रूपानु हो जाएंगे ये मुश्किल है। रूप गोस्वामी के खास जो विचार जो स्वाभाविक स्वरूपगत हैं, उसके अनुगत उसको लेकर के चलने पर ये होगा रूपानु। इसलिए गौड़ीय वैष्णव में भी रूपानु होना बड़ा भारी कठिन है, बहुत ही कठिन। हमारा गौड़ीय वैष्णव विशेष करके हमारे सरस्वती जी के अनुग जितने हैं सब इसी के उपासक हैं। इसलिए ये संबंध यदि हो गुरु का परमार्थगत और गुरु इसको ये दे चीज दें, तो ये सबसे बड़ा भारी गुरु है। इस चीज को जो उपलब्धि करेगा वो एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्मों तक, यहाँ तक कि कृष्ण और राधा जी के गोलोक वृंदावन में पाने पर भी उसका कृतज्ञ रहेगा और ऋणी रहेगा। शिष्य यदि ये नहीं समझता कि मैं उनका ऋणी हूं, तो शिष्य है समझ ही नहीं जिसे क्या उन्होंने दिया मुझे और मैं किस लिए ऋणी हूं। परमार्थ नाम की क्या चीज है, जैसे अधिकांश शिष्य और शिष्य आजकल होते हैं, समझा ही नहीं तो ऋणी किस लिए होंगे। ऋणी तो वो होंगे जिसने 100 रुपया भी दे दिया, कोई श्रृंगार की वस्तु दे दी, कोई आभूषण दे दिया, कोई और चीज दे, उसके ऋणी तो बन जाते हैं, किंतु जो परमार्थ दिया उसका ऋणी नहीं बनते। इसका मतलब वो जानते नहीं कि परमार्थ किसको कहते हैं, विशेष करके ये सब चीजों को क्या वो समझेंगे, नहीं समझते। किंतु धीरे 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 जब ऊपर उठेंगे तो समझेंगे से हाँ ये परमार्थ क्या है और रूपानु किसको कहते हैं और उनके हम कितने ऋणी हैं, ऐसा नहीं समझते। अभी भी हम लोग रूप गोस्वामी के ऋणी हैं कैसे समझेंगे, यदि कुछ उसमें प्रवेश करेंगे तो, अन्यथा नहीं। इसलिए गुरु सेवा में सबसे बड़ा मैं तो ये समझता हूँ रूप मंजरी की धूलि कणा के प्रति हमारा तनिक भी लोग उत्पन्न जो करा देते हैं वही यथार्थ गुरु और परमार्थिक गुरु। और इस भाव को जो नहीं कर सकते तो हमारा गौड़ीय वैष्णव में उनका अभी स्थान नहीं। को जो दे उसी के हम चिर कृतज्ञ और चिर ऋणी। कल हम लोग विनोद ठाकुर ने भी इसी चीज का अधिक वर्णन किया है सिद्धि लालसा इत्यादि, जब अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे बीच में प्रवेश करेंगे तो समझेंगे। इसके बाद का श्लोक गो गोपक अनुबनम नय तो उदार वेणुस्वनय कलपदय तनुभित सख अस्पंदनम गतिमतांशुलक तरुणां निर्जोगपाकृत लक्षण योगी चित्र। गो गोपक अनुबनम, गो माने गायों को, गोपक गो प गो माने पालन पोषण, गाय का जो पालन पोषण करता है उसको कहते हैं गोप। कई हीन अर्थ में अर्थात अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हैं गोपकई गोपाल, कृष्ण के ये जो सब कथा है अल्प वयस वाले, इन सब को लेकर के नए तो उदार वेणुस्वनई, इनको एक वन से दूसरे वनों में ले जाते हुए संचरित कर रहे हैं चराने के लिए।
केवल संग चराना ही काम नहीं है, चराते हैं किस लिए? स्वच्छंद जीवन से चलते हैं, स्वच्छंद, और इसमें सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। ये गोप जाति में गोचारक को ही ये संभव हो सकता है, और उसमें भी प्रत्येक वनों में जाने का उद्देश्य क्या है? गुप्त रूप में श्री जी का अनुमेषण है, उनका अनुसंधान कार्य है, उनको देखते कहां मिलेंगी। ये अनुसंधान के लिए चारों तरफ में वनों में जाते हैं, ये कैसे कहां पर श्रीमती जी मिलेंगी। उदार वेणुस्वनई, उदार माने क्या? कोई चीज, कोई व्यक्ति उदार तब होता है जो पात्र अपात्र का विचार ना करके सबको समान रूप में दे करके कोई चीज दे दे, तभी तो उदार है। उससे जो कुछ मांगा वही दे दिया। तो वेणुस्वनई, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में यह रस का संचार करने वाली वेणुस्वनी है, उदारता पूर्वक सबको देते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जितने वृक्ष लता गुल्म मृग हरिण मयूर सुख सारिका, कोई भी इनके वंशी के ध्वनि से वंचित रहता है? कोई भी नहीं रहता। इसलिए वेणु सनई उदार रूप में वेणु वादन करते हुए सबको ये प्रदान कर रहे हैं। कलपदई, कल माने होता है सुंदर, कलपदई अत्यंत आकर्षण, सब चीजों को आकर्षण कर लेते हैं, इतना सुंदर कलपदई। तनुभिज्य सक्षम, तनुभिज्य प्राणी मात्र के लिए शरीर धारण करने वाले जितने भी, चाहे पेड़ हो लता हो गुल्म हो, अभी पीछे बतलाया हिरणियों को, हिरणियां पंछी ध्वनि सुन करके कैसी हो जाती, स्वर्ग की नारियां कैसी हो जाती हैं, पेड़ वृक्ष लता गुल्म यहां तक कि मेघमंडल नदियां, इनकी क्या दशा हो जाती है, इस सब का उन्होंने वर्णन किया। अस्पंदनम गतिमतान, ऐसा वेणुवादन करते हैं जो अस्पंदनम गतिमतान, जो गतिमतान, जो जंगम है, जो चलने वाले, उनको अस्पंदनम एकदम जड़ बन जाते हैं, और जो जड़ हैं वो चेतन बन जाते हैं। पुलक तरुणा, अरे पेड़ों में भी पुलक आ जाती है, फूलों से भर जाते हैं, रोने उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके पुलक हो जाता है, और आंखों से प्रेम की धाराएं उनकी बहने लगती हैं। हिरण इत्यादि जो चलने वाले हैं, डरने वाले प्राणी, वो एकदम स्तंभित होकर के खड़े हो जाते हैं कृष्ण के पास में, और एक तकतकी लगाए हुए उनके तरफ में देखने लगते हैं। निर्जोग पाक्षण योग, वो निर्जोग पाक्षण योग, निर्जोग और पाक से लक्षणान्वित होकर के बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। निर्जोग मैंने कल बतलाया था कि परसों बतलाया था, निर्जोग, निर्जोग कहते हैं निर्जोग है ना, निश्चय, निश्चय न जोग संगम जस्मा सप्रेम पाठ निर्जोग पाठन, निश्चित रूप में जो जोग करा देता है जीवन भर के लिए ही नहीं, कोटि कोटि जन्मों के लिए जो जो करा देता है, निशेष रूप में, निश्चित रूप में उसको कहते हैं निर्जोग। यहां पर जोग का तात्पर्य साधारण रूप में, बाहरी रूप में तो ये है,
गायों को दूते समय में बछड़े को जिस रस्सी से लगाकर गाय के पैर के साथ में थोड़ा सा अटका देते हैं जब तक ये दूध पूरा न दुहना हो जाए, उसको कहते हैं निर्जोग। अतः तन से उस बच्चे को दूर हटा दिया और मैया के पैर से उसको जोग कर दिया, बांध दिया, ये निर्जोग। और पाठ कहते हैं दुष्ट वर्गों के लिए जो पैर चलाती है दूसरे समय और गड़बड़ी करती है, भाग जाती है, दौड़ती है, उनका पैर पाठ सौ पाठ को संयुक्त रूप से बांधने के लिए जो रस्सी होती है उसको पाठ कहते हैं। कृष्ण ने रेशम जैसे पाठ की रस्सी उसको पीले रंग में रंग दिया और उसके दोनों छोरों में मणि मुक्ता जैसा उसमें चीज झावर जैसा लगा दिया। उसमें निर्जोग को लंबी रस्सी को उन्होंने अपने पगड़ी उसनीस के ऊपर में जैसे पगड़ी बंधी है उसको ऐसे फेटा बांध करके तिरछा उसको ऐसे लगा दिया बांध कर और झालर को लटका दिया और जो पास है उसको ऐसे लटका दिया, कंधे पर रख करके दोनों तरफ से झुला दिया। ये गोपों के लिए ही संभव है। कृष्ण गोप जाति के हैं, गोप का स्वभाव ये उसको प्रकाश कर। कहते हैं कि ये निर्जोग और पाठ ये वह नहीं पाठ।